नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार देश में किसानों के कल्याण और उनकी आय में वृद्धि को प्राथमिकता देने के साथ ही कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के गुवाहाटी में एक जनसभा में देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत देश के साथ दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा ने वर्ष 2025-26 के लिए पूरक अनुदान मांगों को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्य सब्सिडी और रक्षा सेवाओं पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए मांगी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने समग्र व्यापक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया है और यह 1 अप्रैल से लागू होगा। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के बीच ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिशकियन से बातचीत की है। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। पश्चिम एशिया संघर्ष का असर नेपाल में भी देखा जा सकता है। उपभोक्ताओं को आधे भरे हुए एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन एनओसी ने 7 किलो 100 ग्राम वजन का आधा भरा हुआ सिलेंडर 955 रुपए की कीमत पर वितरित करने का फैसला किया है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज जलसंधि से गुजरने की अनुमति मिलने का संकेत दिया है। श्री फतेह अली ने नई दिल्ली में कहा कि भारत और ईरान की दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र में दोनों देशों के साझा हित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
सरकार ने कहा है कि देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सरकार हिंद महासागर में देश के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ओमान के सोहार में हुए हमले में 2 भारतीय नागरिकों की मौत पर विदेश मंत्रालय ने शोक व्यक्त किया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM की सुरक्षा और प्रवर्तन संबंधी उप समिति ने अपनी 24वीं बैठक आयोजित की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि बैठक में संबंधित NCR राज्य सरकारों, GNCTD और पंजाब सरकार द्वारा क्षेत्र में प्रवर्तन कार्रवाइयों की स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। जनजातीय मामलों के मंत्री जुवेल ओराम ने कहा है कि भारत के जनजातीय समुदायों के पास कला, संस्कृति, विरासत और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का असाधारण खजाना है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने नई दिल्ली में जनजातीय कला महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि ये परंपराएं प्रकृति, समुदाय और पीढ़ियों से चली आ रही ज्ञान से गहरे जुड़ाव को दर्शाती हैं। भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार को और मजबूत करने और भारत से विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने तथा व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलने पर चर्चा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यो हान क्यू के साथ बैठक में भारत कोरिया आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला सहयोग का विस्तार करने और अधिक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंध की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारतीय टीम हैदराबाद में महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल मैच आज शाम 7:30 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। कल सेमीफाइनल में भारत ने इटली को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।